अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मस्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष परम उल्लास परमानंद का विषय परम पावन परमानंद के ये क्षण हम और आप महापुरुषों के परम पुरुषार्थ के कार्य स्वरूप प्राप्त इस सुंदर श्री प्रेमपुरी आश्रम के भवन में नित्य प्रति की सत्संग सुधा वर्षा और पूरे दिन जहां पर सत्संग की सुधा वर्षा होती हो महापुरुषों का परम पुरुषार्थ जो हमको प्राप्त हुआ है बारंबार धन्यवाद उन महापुरुषों का उनके तप का परमेश्वर का जिनकी कृपा से हमारा आपका मन हमारा आपका शरीर इस ओर अग्रसर हुआ हमारा मन सत्संग में लगे हमारा शरीर सत्संग की ओर आए तो बारंबार धन्यवाद प्रभु का महापुरुषों का। वर्तमान में हमारा जो विषय है चिंतन का भगवान श्रीमद् भगवद गीता में निश्चित जो परमेश्वर की वाणी है षोडश अध्याय दैवी संपदा और आसुरी संपदा हम लोगों ने अपने चिंतन के विषय को रखा है तो जो 27 लगभग गुण हैं ये दैवी संपदा के उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम तमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस् तपार्जवम्। तो हम लोगों ने कल दान के ऊपर चर्चा की कि किस प्रकार से तीन प्रकार से एक ही दान किया जा सकता है उसी एक दान से हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं अगर वो निष्कामता की तरफ है और यदि वही दान राजस भाव में आ जाता है तो वो हमको जगत के पदार्थों को प्रदान करता है और वही दान यदि तामस भाव में आ जाए तो हमारे लिए कुछ भी लाता नहीं बल्कि भय उत्पन्न करके स्वयं जो है हमारा नाश कर देता है यानी दान भी हो और हमारा नाश भी हो ये तामसी दान का स्वभाव है। तो निर्णय आपको करना है कि आपको क्या चाहिए परमेश्वर चाहिए संसार चाहिए या जो है केवल संसार का जो भाव है ना जो संसार की बहती हुई अवस्था है उसमें आपको स्थित रहना है तो निर्णय आपको करना है। तो बहुत ज्यादा संख्या तामसी दान की देखी जाती है उसके बाद राजस भाव की देखी जाती है और सात्विक भाव का दान बहुत ही कम मात्रा में देखा जाता है क्योंकि निष्काम होना इतना आसान नहीं दैवी संपदा का गुण है ये। तो उदाहरणार्थ हम लोगों ने बहुत से उदाहरण देखे थे। आज का हमारा जो विषय है वो है दम इंद्रियों का दमन क्योंकि हमारा सारा शरीर जो है वास्तविकता में अगर आप देखें तो हमारी जो पांच कर्मेंद्रियां हैं उन्हीं को जोड़ करके ये बनाया गया है उसमें हाथ पैर दो बड़ी बड़ी विशाल इंद्रियां हैं कर्मेंद्रियां तो हाथ पैर को अलग कर दें तो शरीर में बचता ही क्या है। तो हमारी जो पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा निर्मित ये आपका शरीर है तो इसमें 10 इंद्रियां मानी गई हैं और इन 10 इंद्रियों का राजा माना गया मन। तो इन 10 इंद्रियों में 5 हैं ज्ञान इंद्रियां और 5 हैं कर्म इंद्रियां। भगवान ने स्वयं जो है गीता में बहुत जगह इंद्रियों के वश करने की बात का विषय लिया है और जो हम लोग आज इतवार के दिन 12वां अध्याय पढ़ते हैं और 12वें अध्याय में भगवान ने ज्ञानी के स्वरूप का वर्णन किया है तो उसमें ज्ञानवान की स्थिति का जो है भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं सन्नियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता। तो सन्नियम इंद्रिय ग्रामम जिन्होंने अपने इंद्रिय समुदाय को भली भांत क्या कर लिया है निग्रहित कर लिया है ना तो यानी जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में हैं। तो एक तो सबसे पहला जो हमारे अंदर भेद बुद्धि है और ज्यादातर लोग कोशिश ऐसा करते हैं और देखा जाता है जब हमारे अंदर विवेक नहीं होता तो हम अपनी कर्म इंद्रियों को वश करने की चेष्टा करते हैं जबकि कर्म इंद्रियों के ऊपर आपको लगाम नहीं लगाना है। लगाम कहां लगाना है? लगाम लगाना है ज्ञानेन्द्रियों के ऊपर, क्योंकि भटकाने वाली कौन है? ज्ञानेन्द्रियां, जो आपको संसार का अर्जन करके देती हैं। आंखों से आप देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नासिका से ग्रहण करते हैं, और जो है इसके बाद आपका जो है त्वचा इंद्रिय से स्पर्श करते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये ज्ञानेन्द्रियां हैं, जिनसे आप संसार के ज्ञान को यानी विषयों को ग्रहण करते हैं, और ये मन को प्रेरित करती हैं, और मन उसके बाद जो है कर्म इंद्रियों को प्रेरित करता है। तो कर्म इंद्रियां तो महाराज जड़ हैं, हाथ को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, पैर को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। आपके मन ने, आपकी बुद्धि ने जब प्रेरित किया, तभी तो आपके पैर सत्संग भवन तक आए, क्योंकि पैरों को अपना कुछ भी स्वभाव पता नहीं है कि मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना। ये तो आपका मन जहां प्रेरित करेगा, ये पैर वहीं चलकर चले जाएंगे, आपके हाथ वही कार्य करने लगेंगे। तो जो मुख्य चीज है वो है पांच ज्ञानेन्द्रियां, जिनसे हम जिसको जो है स्पेशल विशेष जिनको सेंसेशन प्राप्त है देखने का, सुनने का, स्वाद लेने का, तो निग्रह जो करना है वो ज्ञान इंद्रियों का करना है। कर्म इंद्रियां स्वतः ही निग्रहित हो जाएंगी। जब आप अपने मन से प्रेरणा ही कर्म इंद्रियों को नहीं करोगे, तो कर्म इंद्रियां इधर उधर भागने का मतलब ही नहीं है। लेकिन हम उल्टी कोशिश करते रहते हैं। देखा होगा आपने, हम यहां नहीं जाते, वहां नहीं जाते, ये नहीं खाते, वो नहीं पीते, ये नहीं पहनते, इनसे आप, इन चीजों से आपका कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। ये इंद्रिय निग्रह नहीं कहलाता है, इंद्रिय निग्रह कहलाता है भगवान ने जो गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य, है ना। आपका जीवन बिल्कुल आपके साधना के अनुकूल होना चाहिए। साधना का अनुकूल का मतलब, जब हमने ये निर्णय ले लिया, आध्यात्मिक पुरुष के जीवन का ये निर्णय है कि मुझे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना। जैसे आप सांसारिक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की बाधा पसंद नहीं करते हो, जैसे मान लीजिए आप यहां से बंबई से ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं, है ना, तो उस ट्रेन में बैठने के बाद आप यही तो चाहते हैं कि ये ट्रेन बिना किसी जो है व्यवधान के सीधी दिल्ली पहुंच जाए, यही चाहते हो कि नहीं चाहते? या आप ये चाहते हो कि हर 10 कदम पे ट्रेन के सामने बाधा खड़ी हो जाए? जैसे आप अपनी इस यात्रा को, सांसारिक यात्रा को बिना बाधा के तय करना चाहते हैं, बस जो स्टेशन निर्धारित है वहां रुके, जंगल में गाड़ी ना खड़ी हो अनावश्यक रूप से, अगर किसी जंगल में एक घंटा खड़ी हो गई तो सारे यात्री परेशान हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हो जाते। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपनी यात्रा में बिल्कुल भी समय की बाधा को स्वीकार नहीं करते, ध्यान देना। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक पुरुष भी, जो आध्यात्मिक प्रेमी है, भगवत प्रेमी है, वो भी भगवान के मार्ग में किसी भी प्रकार की सांसारिक बाधा को स्वीकार नहीं करता। और वो बाधाएं क्या हैं? खाना पीना, पहनना, सोना, ओढ़ना, जो भी आपका जगत कार्य है, यदि ये इंद्रियों के माध्यम से आपके और भगवान के मध्य में आएगा, तो भगवान का स्मरण चिंतन बंद हो जाएगा, और भगवान का स्मरण चिंतन बंद होने पर आपका रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए इंद्रियों के दमन के लिए हमारे यहां आध्यात्मिक जगत जोर देता है। केवल श्रुतियां नहीं, स्मृतियों में देखो, कटश्रुति में कितनी बड़ी व्याख्या की है स्वयं यमराज ने नचिकेता के लिए ब्रह्म ज्ञान में, है ना। तो पहले तो गीता के माध्यम से समझ लें, संयम इंद्रिय ग्रामम, ज्ञानी महापुरुष का जो है भगवान ने वर्णन किया है कि ज्ञानी महापुरुष किसको कहते हैं, बोले संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया, जिसकी बुद्धि सम हो गई और जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में आ गई। क्योंकि इन इंद्रियों का वास्तविकता में कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारे आपके सोचने का है। इंद्रियां तो बिचारी जड़ हैं, ये तो आप आंख से कहोगे देखो तो ये देखेगी, नहीं कहोगे तो नहीं देखेगी। अगर आप आंख से कहोगे, कान से कहोगे सुनो तो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। जैसे आप एकाएक सत्संग में बैठे बैठे किसी दूसरे विचारों में खो जाते हैं, पूरा सत्संग समाप्त हो जाता है लेकिन आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता कि आज सत्संग में क्या बोला गया। क्यों? क्योंकि आपकी मन बुद्धि वहां पर थी ही नहीं, तो आपने आदेश नहीं दिया, इसलिए आपके कान ने सत्संग को नहीं सुना। है क्या? आपने कान में रुई तो नहीं लगाई, आपने अपने कानों को बंद तो नहीं किया, आपने अपने कानों को बिल्कुल बहरा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके कानों ने कुछ नहीं सुना, क्योंकि आपका मन बुद्धि वहां पर था ही नहीं। ये है समस्या में। ये मुख्य समस्या इंद्रिय निग्रह वास्तविकता में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल और केवल मात्र अपने लक्ष्य की ओर, जैसे अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख को लक्ष्य वेदन का जब निशाना बनाया गया तो सब कुछ अपने आप दिखाई देना बंद हो गया। न वहां वृक्ष है, न पेड़ है, न साथी है, न भाई है, न बंधु है, न गुरु है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। अर्जुन कहता है मुझे केवल एक चिड़िया की आंख दिखाई देती है। इसी को इंद्रिय निग्रह कहते हैं। इंद्रिय निग्रह ऐसा कोई बहुत विशेष प्रयत्न नहीं करना है आपको कि आप कोई बहुत बड़े विजेता हो जाओ। केवल अपने लक्ष्य की ओर यदि आप निर्धारण करके उसकी ओर संधान करेंगे तो हमारा जो है श्रुति के अनुसार है, कहते नहीं है, प्रणवो धनु सरो यात्मा ब्रह्म तलच्छ मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्नमयो भवेत्। है ना, प्रणव को धनुष बनाकर जिस प्रकार से धनुष से तीर छोड़ा जाता अपने संधान में, जब तक वो लग नहीं जाता तीर तब तक शांति को प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार से अप्रमादी पुरुष प्रणवो धनु सरो यात्मा, यहां तीर कोई दूसरा नहीं है, आप स्वयं तीर हैं। और जिस प्रकार से वो सांसारिक तीर अपने लक्ष्य को बेधे बगैर बीच में कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं होता, अगर बीच में कहीं शांति प्राप्त हो जाए तो लक्ष्य का भेदन कैसे होगा, ठीक उसी प्रकार से सर्वतन्नमयो भवेत् कहते हैं। वो अप्रमादी व्यक्ति प्रमाद रहित होकर जब ब्रह्म रूपी लक्ष्य का संधान करता है तो महाराज अप्रमादी अवस्था में ही बिना रुके, ये इंद्रिय निग्रह कहलाता है। जब हम अपनी इंद्रियों के भोग पदार्थों की व्यवस्था करने की बजाय केवल अपने लक्ष्य का ध्यान देते हैं, अन्यथा साधारण मनुष्य का सारा जीवन इन हमारी अपनी शारीरिक इंद्रियों की भूख प्यास को मिटाने में ही क्या हो जाता है, निकल जाता है। और अंत तक इस मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इंद्रियों की भूख प्यास समाप्त नहीं होती। हम लोगों ने तो देखा बचपन में, कोई बुजुर्ग जब मरने के लिए उसकी बिल्कुल अंतिम सांसें चलती थी ना, तो घर वाले बड़ा प्यार दिखाते थे महाराज, हाँ उससे पूछते थे कुछ खाना है, हाँ? अरे मर रहा है, उसको शांति से मरने दो बेचारे को, उससे भी पूछ रहे हैं मर रहा है, उससे भी पूछ रहे हैं कुछ खाना है। वो भी ऐसा मजबूत होता था महाराज, कहता था गुलाब जामुन, ऐसे इशारे से बताता था, बोले गुलाब जामुन नहीं खाया। तुरंत एक छोटे लड़के को दौड़ाया हलवाई की दुकान, अरे जाओ जाओ जल्दी गुलाब, है ना, जिंदगी में तो पूछा नहीं, जिंदा था तब तो पूछा नहीं, है ना, मरते समय जब उसके मुंह में जाने वाला नहीं है तो उसके लिए गुलाब जामुन की क्या कर रहे हैं। वो भी ऐसा पक्का है महाराज कि वो भी बिना खाए मानता नहीं है, मर रहा है लेकिन फिर भी खा खा के गुलाब जामुन खा के जा नहीं रहा है अंदर, घर वाले जबरदस्ती खा लो थोड़ा सा खा लो। ये इन इंद्रियों की दशा है महाराज, मरते दम तक हमारी भूख प्यास मिटती नहीं है, ऐसा देखा जाता है महाराज सांसारिक जीवन में। और जो शुद्ध चित्त महापुरुष, कुछ भी नहीं, हमारे यहां मस्त राम बाबा थे ऋषिकेश में, छह महीने मृत्यु आने से, शरीर छोड़ने से छह महीने पहले उन्होंने गंगा जल का भी परित्याग कर दिया। सोचो छह महीने उन्होंने एक ड्रॉप, नॉट ए सिंगल ड्रॉप, पानी तो पानी गंगा जल भी नहीं पिया, और उनका शरीर इतना विशाल शरीर था सिकुड़ के बिल्कुल बच्चे के बराबर हो गया। ये इंद्रिय निग्रहित व्यक्ति की, आत्मज्ञानी की अवस्था है महाराज, जहां पर कोई लालसा नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं वासना रहित अवस्था, कोई लालसा नहीं, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है महाराज, है, नॉट ए सिंगल, कैसे छह महीने वो किस शक्ति से चला, ये वो आध्यात्मिक शक्ति है महाराज, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन को महाराज लगाया और उसको पाया, विचारणीय। तो ऐसे महापुरुष देखे जाते हैं। और एक जगह स्थिति यह है कि मरते समय भी खाने की बातें, पीने की बातें हैं, आखिरी तक इंद्रियों से ही हमारा लगाव समाप्त नहीं होता। तो दम, भगवान कहते हैं संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया, जीते जी अपने इंद्रियों को शांत करने की चेष्टा करो, क्योंकि ये इंद्रियां तो इनका तो काम ही महाराज खाना पीना पहनना ओढ़ना, इसके अलावा इनको कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी कोई इंद्रिय आपको अपनी तरफ ले जाएगी, कभी कोई इंद्रिय आपको ले जाएगी, लेकिन विचार आपको ये करना है कि हमने भगवत चिंतन यानी अपने परमेश्वर के संग, हम अपने प्रियतम के संग कितनी देर जुड़े, हमने उसके लिए कितना समय रखा। तो जब हम अपना निर्धारण इस प्रकार से करते हैं तो इंद्रियों को इतना मौका ही नहीं मिलता कि महाराज विषयों के बाजार में भटकें। सीधी सी बात यह है, जब आपके पास इंद्रियां तभी भटकेंगी। एक गुरुदेव थे, उनके पास एक विदेश का शिष्य आया, तो वो 10 दिन विदेश से आके उनके पास रुका करता था। उसने एक बहुत सुंदर बात कही, बोले महाराज श्री एक बात बताओ, जब मैं अपने घर में यानी विदेश में जहां वो रहता था, बोले जब मैं वहां रहता हूं, जब मैं भगवत चिंतन करता हूं तो मेरा मन बड़ा प्रेम से लग जाता है, लेकिन जब मैं आपके यहां आ जाता हूं, यहां आकर पूरा समय ही मेरे पास साधना के लिए होता है, यहां मन क्यों नहीं लगता। है ना विचित्र बात, जब आया ही इसी काम के लिए विदेश से, गुरुदेव की शरण में रहकर साधना करेंगे, तो बोले महाराज साधना में मन क्यों नहीं लगता। तो गुरुदेव बहुत सुंदर जवाब दिया। तो उन्होंने पूछा उससे, बताओ एक बात बताओ कि गधा लोट कब लगाता है। क्यों भाई गधा कब लोटता है, जब उसके ऊपर से धोबी भार को हटा लेता है। जब तक उसके ऊपर भार रखा है वो लोट लगाएगा, नहीं लगाता। जैसे ही उसके ऊपर से भार हटाया वैसे ही वो क्या लगाने लगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। जब तक आप पूर्णतया व्यस्त रहते हैं, आपका चिंतन लगा रहता है मैं भगवान का ध्यान करूं, और जब आप बिल्कुल खाली हो गए तो कहते क्या करें हैं? क्यों भाई ये हो जाता ना, क्या करें अब क्या करें। तो फिर आप या तो अपना सिर किसी के द्वारा खपाते हैं, या आप किसी का सिर खाते हैं, यही करते हो कि नहीं करते, और इसी में आपका समय गुजर जाता है यानी व्यर्थ चला जाता है। तो भगवान की साधना से हम दूर हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ भार अपने ऊपर रखे रहो, जब तक पूर्ण सिद्ध अवस्था प्राप्त ना हो जाए, यानी निरंतर चिंतन की अवस्था है। उदरम अंतरम कुरते है ना, शास्त्र तो महाराज 33 श्रुति कहती उदरम अंतरम कुरते, इतना सा भी क्षण मात्र का भी अंतर करने पर बड़े बड़े विदुष पुरुष भयभीत हो जाते हैं, संसार भय से भयभीत हो जाते हैं, है ना। तो इंद्रिय निग्रह इसीलिए हमारे यहां जोर दिया गया। तो आइए थोड़ा सा कट श्रुति का भी जो है आस्वादन कर लीजिए कि यमराज ने नचिकेता को क्या समझाया हमारा, है ना, क्योंकि श्रुतियों के माध्यम से भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और देखो स्वयं ब्रह्म ज्ञान विषयक जो ज्ञान दिया है उसी में ये प्रसंग आता है, वह जो है अध्याय 1 के तृतीय वल्ली में, जिसको हम लोग बहुत प्रसिद्ध उदाहरण मानते हैं कटश्रुति का, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मना प्रग्रहमेव च। तो ये हमारा शरीर जो है स्वयं रथ माना गया, ये शरीर हमारा क्या है, रथ है। और आत्मानम, आत्मानम स्वयं जो है हम, या जीव आत्मा कहें या आत्मा कहें, दोनों एक ही चीज है, केवल कहने मात्र का भेद है। तो आत्मानम रथिनम, इसका रथी है जो इसके अंदर से बोल रहा है, जो इसके अंदर बैठकर सुन रहा है, जो इसके अंदर बैठकर नासिका का उपयोग कर रहा है, जो इसके अंदर बैठकर आपके रसना इंद्री का उपयोग कर रहा, उसी का नाम आत्मा है। तुम नहीं कर रहे हो, ये जिब्बा स्वाद नहीं ले रही है, स्वाद कौन ले रहा है, अगर जिह्वा स्वाद लेती होती जाकर के किसी पागल को पकड़ लो सड़क में और उसको महाराज सुंदर सी मिठाई खिलाओ और उसके बाद उस पागल से पूछो कैसी है, क्या जवाब मिलेगा? मिलेगा कुछ जवाब? कोई जवाब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि बिल्कुल भी उस स्वाद को स्वीकार नहीं कर रही है। तो स्वाद लेने वाला कोई और है, मान हम अपने आप को रहे, यही भ्रम है। इस भ्रम को ही तो दूर करना, इसीलिए इंद्रिय निग्रह है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, शरीर रथ है और आत्मा महाराज इसका जो है रथी है, और आपकी बुद्धि इस सुंदर रथ को यहां वहां ले जाने वाली है। बुद्धि तु सारथम सारथिम विद्धि, कहते हैं मना प्रग्रह में ऊंचा, जिस प्रकार से उस रथ में जो है सारथी लगाम लगा के घोड़ों के ऊपर नियंत्रण करता है, तो इस घोड़ों के ऊपर आपकी इंद्रिय रूप घोड़ों के ऊपर नियंत्रण करने वाला कौन है? बोले लगाम यहां पर मन है, मन रूपी लगाम भगवान ने हमको दी है। बोले उसके बाद इंद्रियाणि हयानाहुर विषया इस्ते सुगोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। मनीषिणा यानी ज्ञानी जन जो है बताते हैं, क्या बताते हैं? इंद्रियाणि हयान, ये इंद्रियां ही हयान हैं। हयान यानी घोड़े, कोई दूसरे घोड़े नहीं है, ये दसों इंद्रियां ही इस रथ को चलाने वाले दस घोड़े हैं महाराज। और ये घोड़े महाराज चलते कहां पर हैं? तो कहते हैं विषयान, विषयान स्थेश गोचरन, ये इनके विचरण करने का स्थान है। संसार में बिखरे हुए नाना प्रकार के भोग पदार्थ, जितना भी आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, देश विदेश यहां वहां जहां जहां तक आपका मन जा सकता है, ये सब विषय फैले हुए हैं। देखो लोगों का कहां तक मन जाता है? बोले देश यात्रा हो गई, उसके बाद विदेश यात्रा हो गई, बोले अब स्पेस में जाना, कहां जाना? अंतरिक्ष की यात्रा करनी है, और जबकि हम खुद अंतरिक्ष में हैं, कोई बाहर अंतरिक्ष के बाहर थोड़ी है, हम लोग भी तो अंतरिक्ष में लटके हुए हैं, लेकिन पृथ्वी के वातावरण के कारण हमको उस प्रकार का अनुभव नहीं हो रहा। अगर वातावरण समाप्त हो जाए, ओजोन की लेयर समाप्त हो जाए, पृथ्वी का वातावरण समाप्त हो जाए, तो महाराज हम भी स्पेस में घूमने लगेंगे, स्पेस में ही हैं हम। लेकिन यही महाराज इन घोड़ों के विचरने की स्थिति है। कहां चाहिए? बोले स्पेस चाहिए। स्पेस में चले गए, बोले अब बृहस्पति ग्रह जाना है, उसके बाद मंगल जाना है, उसके बाद शनि जाना है, बोले ये भी पार हो गया, अब बोले अपने सौर मंडल के बाहर जाना है, बोले फिर बोले महाराज अपनी आकाश गंगा से बाहर कहां तक जाओगे? है कोई सीमा? एक आकाश गंगा हो तो महाराज विचरण कर ले, असंख्य आकाश गंगाएं हैं, असंख्य सूर्य हैं, कहां किन किन सूर्यों के ऊपर जाकर तुम महाराज जो है क्या कहते हैं पिकनिक मनाओगे? क्यों भाई जाओगे पिकनिक मनाने सूर्य में? है ना विचित्र, ये मन है महाराज, इन घोड़ों को लेके विचरता रहता, जीवन के जीवन वैज्ञानिक के वैज्ञानिक समाप्त होते चले जाते हैं, इंद्रियां समाप्त हो गई, जीव समाप्त हो गए, लेकिन महाराज ये विषय समाप्त होने वाले, ये ज्यों के त्यों रहने वाले हैं। इंद्रियाणि हयानाहुर विषया स्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा। कहते हैं शरीर, तीन चीजें हमारे पास हैं, आत्मा, यहां पर शरीर के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, हमारा शरीर, और उसके बाद इसमें लगी हुई ये दस इंद्रियां, और उसके बाद इन इंद्रियों का राजा मन। कहते हैं आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा। कहते हैं भोक्ता, इतनी सारी चीजें मिलकर यानी हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां और हमारा मन, जो प्रक्रिया चल रही है, जो साधारण प्रक्रिया है संसार में, वो बतलाई जा रही है यहां पर कि किस प्रकार से ये तीन चीजें इस संसार के विषयों को भोगने की क्या करती हैं, चेष्टा करती हैं, और इसके लिए सांसारिक व्यक्ति के पास कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, चाहे उसकी हमको कोई जरूरत हो अथवा ना हो। अरे भाई, आपको रहने के लिए एक मकान चाहिए या दस? कितने मकान चाहिए हैं? रहने के लिए आपको एक मकान भी नहीं, केवल एक कमरा चाहिए। वास्तविक सत्य तो ये है। लेकिन अगर आपको कोई गिफ्ट में 200 कमरे का मकान दे तो मना कर दोगे हैं? कोई मना करेगा? यहां पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये कह दे कि हम मना कर देंगे, भाई हमको नहीं चाहिए, दे दो, चाहे हमको उसकी जरूरत हो अथवा ना हो। इसको कहते हैं भोक्ता की अवस्था। हमको किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं है, धन हमको चाहिए या नहीं चाहिए, असंख्य धन कमा लिया, रखने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं है, यानी शरीर से, इंद्रियों से, मन से, इस संसार को हम कितना भोग लेना चाहते हैं, ये हमारी कौन सी अवस्था तय करती है? इसको यहां पर समझा रहे हैं महाराज यमराज। किसको? नचिकेता को। यस्तु विज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टा स्वायव सार्थे। पहला उदाहरण दिया किसका? कहते हैं अविज्ञानवान। यस्तु अविज्ञानवान, कहते हैं अविज्ञानवान का मतलब विवेकहीन, जिसके अंदर सोचने समझने की सामर्थ्य नहीं है, उसको कहते हैं विवेकहीन। और उसके बाद दूसरा शब्द प्रयोग किया यमराज ने, अयुक्तेन मनसा सदा, जिसका मन अवशीभूत और जिसकी बुद्धि विवेक से रहित है, उसके द्वारा इन इंद्रियों रूपी जो घोड़े हमको प्राप्त हुए हैं, जैसे एक असावधान सारथी अगर रथ में बैठकर सो जाए तो उसके घोड़े अपनी मर्जी से ले जाकर उसको कहीं भी ले जाएं, उसी प्रकार से दुष्ट घोड़ों की भांति ये दुष्ट बन जाती हैं इंद्रियां। वास्तविकता में इंद्रियां दुष्ट नहीं है, लेकिन जब आपने अविवेकशीलता का क्या लिया महाराज, जाकर आपने जो है शरण ले ली, तो ये महाराज अविवेकी स्वभाव हमको दुनिया भर के विषयों में क्या कर देता है? फंसा देता है, और इतना फंसा देता है कि उन विषयों से निकलने का रास्ता हमको पता नहीं है। वापस कैसे निकलना? घोड़े बेसुध होकर जंगल में चले तो गए और सारथी महाराज सो गया, अब सारथी को भी नहीं मालूम कि वापस कैसे आना, और घोड़े तो बेचारे वैसे ही जो है बेहाल है। तो वही हाल हमारा हो जाता है अंत में कि अविवेकता और जिसको कहते हैं वशीभूत ना होना, इंद्रियों का अवशीभूत अवस्था का होना, यही हमारे लिए नाश का कारण बन जाता है, यानी परमेश्वर से दूरी का कारण बन जाता है। और दूसरी तरफ कहते हैं यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सार्थे। कहते हैं जिनके सुंदर अश्व और सुंदर सारथी, सजग सारथी, विवेकवान विज्ञानवान सारथी, और युक्त यानी जिसकी इंद्रियां या जिसका नियंत्रण अपने घोड़ों के ऊपर है, सजग सारथी जो है वो कभी भी अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकने नहीं देता, यानी व्यर्थ के विषयों में जाने नहीं देता, विषयों का उपयोग करता है, भोग नहीं करता। जब आप विषयों का भोग करने लगेंगे तो ये विषय अपने संग आपको भी ले डूबेंगे, और जब आप विषय का उपयोग करेंगे, देखो एक सांसारिक व्यक्ति विवाह करता है, परमात्मा ने भी विवाह किया, भगवान भोलेनाथ का भी विवाह हुआ, भगवान श्री राम का भी विवाह हुआ, लेकिन सजग गृहस्थ जिसको कहते हैं, हमारा आपका विवाह होता है, हम उसी में बह जाते हैं, और इंद्रियों के विषयों के प्रवाह में बह जाने के कारण वही गृहस्थ जीवन हमारे लिए क्या बन जाता है? जंजाल बन जाता है, और इतना भयंकर जंजाल बन जाता है कि परमेश्वर की हमको याद ही नहीं रह जाती। ये हुआ, जंगल में चले गए घोड़े, यानी सांसारिक जंगल में हम इतने व्यस्त हो गए कि हमको ये भी याद नहीं रहा कि हमको मनुष्य का शरीर किस लिए मिला था, परमेश्वर के लिए मिला था या संसार के लिए मिला था। तो जब विचार करने का नंबर आया तो पता चला कि वास्तविकता में ये संसार के लिए नहीं, ये तो महाराज परमात्मा के लिए मिला था। तब जो है हमने इंद्रिय नियंत्रण करने की बात सोची तो उसमें भी महाराज बुद्धि उल्टा ही सोचने लगी और लोग ज्ञान इंद्रियों की बजाय कर्म इंद्रियों का नियंत्रण करने लगे। आपने देखा होगा, बोले महाराज हमने 20 साल से चीनी नहीं खाई, 20 साल से नमक नहीं खाया, अच्छे कपड़े नहीं पहनता हूं, ये नहीं करता हूं वो, ये वैराग्य नहीं है, ये इंद्रियों का नियंत्रण नहीं है, ये तो अहंकार की वृद्धि है। ऐसा करता हूं नहीं करता हूं का वहां पर कोई सवाल नहीं है, आपको केवल उतना ही ग्रहण करना है जितना आपके शरीर के निर्वाह को क्या है आवश्यकता है, इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। उससे ज्यादा आप जो भी कार्य करेंगे वो आपके लिए क्या हो जाएगा, अरे भाई नुकसानदायक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपको गहने बड़े अच्छे लगते हैं, उदाहरणार्थ समझिए, आपको गहने बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन उन गहनों की एक सीमा है, आप अपने शरीर में कितने किलो गहने पहन सकते हो बताओ, अगर कोई 10 किलो गहने ऊपर से नीचे तक आपको पहना दे पहन पाओगे, एक घंटा भी पहनना क्या हो जाएगा है? कोई एक किलो का हार पहना दे, उसके बाद जो है आधा आधा किलो के कंगन आपके हाथ में डाल दे, तो आपके पूरे शरीर में महाराज गहने इस प्रकार से 10 किलो पहना दिए जाएं तो एक घंटे बाद आपकी हालत क्या हो जाएगी। यानी सीमा से जो भी चीज बाहर जाएगी वो आपके लिए दुखदायी हो जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्र बारंबार इंद्रियों के नियंत्रण की बात करते हैं। दमः भगवान ने गीता में और श्रुतियों तो बहुत जगह मारा, तस्य तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठापिता, केन श्रुति कहती है ना, ये आधार हैं, तस्य तपो दमः कर्मेति, ये ब्रह्म विद्या के आधार हैं महाराज, फाउंडेशन जिसको, जैसे बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग खड़ी नहीं होती, उसी प्रकार से इन तीनों के बगैर तप, इंद्रियों का दमन और निष्काम कर्म, इन तीनों के बगैर आपको वेद समझ में आने वाले नहीं है, क्योंकि वेद को पढ़ सकते हैं मगर उनके तत्वार्थ को आप समझ नहीं सकते। तो इसके लिए अति आवश्यक है इंद्रियों का दमन। इसीलिए भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य, विषयों को ग्रहण भी करना है क्योंकि उसके बगैर आपका शरीर यात्रा जो है ये चलने वाली नहीं है। विषय तो आपको खाना पीना पहनना ओढ़ना ये सारे क्रम चालू रखने हैं, लेकिन किस हिसाब से, जिससे हमारी इंद्रियां पूर्णतया स्वस्थ चित्त होकर भगवान का, परमेश्वर का, परमार्थ का चिंतन कर सकें, उसको ना भूले महाराज। अगर उसको भूल गए तो शास्त्र कहते हैं महती विनष्टि, क्या हो जाएगा, हाँ महान विनाश हो जाएगा। और जो पराकाष्ठा है, देखो है ना, इंद्रियों की जो 33 श्रुति में आपको देखो सुनाते हैं, जब आपकी इंद्रियां पूर्ण निग्रहित होंगी तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, पूर्ण ज्ञान की अवस्था देखो वर्णन करती 33 श्रुति, यतो वाचो निवर्तन्ते, देखो क्या है परम ज्ञान, अप्राप्य मन साहस है, जब ये वाणी ये मन है ना, इंद्रियों से हम आप परमेश्वर को कैसे देखना चाहते हैं, साक्षात देखना चाहते हैं कि नहीं, हमारे सामने भगवान खड़े हो जाएं आकर, लेकिन जब महाराज ऋषियों ने अनुसंधान किया, इन इंद्रियों को नियंत्रित करके पूर्णतया पूरी शक्ति से भगवान की ओर झोंक दिया तो महाराज हमारी वाणी हमारा मन पूर्ण जोर से भगवान की तरफ भागा, लेकिन क्या हुआ, कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, मन सहित ये वाणी वहां से वापस लौट आई, इसको कुछ मिला नहीं, क्योंकि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान सा विवेति कुतश्च नेति, जिस समय आनंद को प्राप्त ब्राह्मण यानी ब्रह्मज्ञानी है ना, जो आनंद को प्राप्त हुआ विद्वान ब्राह्मण है यानी ब्रह्मज्ञानी है, उसको महाराज फिर उस समय, क्योंकि उसकी वाणी मन दोनों जो है वहां से वापस आ गए, तब उसने उस परमानंद को प्राप्त किया, और उसके बाद कहते हैं ना विवेति कुतश्चनेति, उसके जीवन में फिर किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। ये पराकाष्ठा इंद्रिय निग्रहित व्यक्ति के जीवन की परम पराकाष्ठा है। तैतरी श्रुति का जो है बहुत सुंदर श्लोक है कि हम लोग जो मन इंद्रिय से भगवान को पकड़ने की रात दिन चेष्टा करते हैं, और वास्तविक सत्य यह है कि भगवान मन इंद्रिय वाणी से बिल्कुल क्या है, परे हैं, इंद्रियातीत हैं। जब ऐसी स्थिति को वो समझता है उसको परम ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वो निर्भय हो जाता। देखो सारे जो दैवी संपदा के गुण एक दूसरे से गुथे हुए हैं। पहला था ना अभयम, अभयम क्यों हुआ, क्योंकि जब उसको परमानंद की प्राप्ति हो गई अब उसको किसी से भी भय नहीं रहा। ये परमानंद स्वरूप की अवस्था है महाराज, है ना। संपूर्ण भय उसके समाप्त हो जाते हैं, न काल का भय, न सांसारिक विषयों का भय कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, दूसरे के पास क्या है क्या नहीं है, इन सब चीजों से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से हमको जो है दमा दैवी संपदा का ये बहुत बड़ा गुण है, इंद्रिय निग्रह अवश्यमेव करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नोट है महाराज। इन नोटों के बगैर आध्यात्मिक बाजार में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ज्यों ज्यों आप अपनी इंद्रियों को निग्रहित, यानी केवल इतना ही तो करना युक्ताहार विहारस्य, जितनी आवश्यकता है उतना ग्रहण करो, और नहीं है तो उसको क्या कर दो, दूसरे के लिए छोड़ दो। जरा सोचो कितना सुखी समाज हो अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जितनी जिसको आवश्यकता है। हजारों करोड़ों साल से महाराज ये पशु पक्षी अपने आप जीवित हैं, ना इनके ऊपर कोई गवर्नमेंट है, ना कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, ना कोई इनका गृह मंत्री है कोई है बोलो, लेकिन अपने आप स्वतः इन्होंने जो है अपने आप को क्या किया हुआ, नियंत्रित किया हुआ है। जितना जिसको आवश्यकता उतना ग्रहण करता है। अगर हमारी आपकी तरह छूट मिल जाए शेर को तो महाराज वो तो पूरा जंगल एक दिन में मार दे। आपको मालूम है केवल महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, दो दो महीने में एक बार शिकार करता है कौन। और हमारी हालत क्या है, हमको 1 करोड़ रुपया रोज मिले कोई मना करेगा, क्यों भाई कोई मना करेगा, 1 करोड़ रुपये की रोज की आपकी आमदनी होने लगे। बोले भाड़ में गया वेदांत, क्या करना, आने दो माल, क्यों भाई, यही दशा है कि नहीं है। चाहे आवश्यकता है अथवा नहीं है, लेकिन देखो इन पशु पक्षियों को गुरु बनाओ महाराज। इतना असंख्य जीव समुद्र के अंदर बसे हुए हैं, लेकिन आपने देखा है कभी किसी जीव को हड़ताल करते हुए बंबई वालों हमारी मदद करो क्यों भाई। ये भी मछली कभी आपने देखी आपके पास शिकायत करने आई हो कि हम भूखे मर रहे हैं, स्वयं सुव्यवस्थित हैं, कोई किसी कोई गवर्नमेंट नहीं, किसी प्रकार की कोई सरकार नहीं, और हमारे ऊपर दुनिया भर का नियंत्रण, लेकिन उसके बाद भी हम दुखी के दुखी। ये हमारी अनियंत्रित इंद्रियों का परिणाम है, इसलिए भगवान ने दमह शब्द का प्रयोग किया है दैवी संपदा में। तो आइए 5 मिनट हैं, आपको एक भजन सुना दें, उसके बाद जो है आज इतवार है, इतवार का कुछ लाभ ले लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल लगाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। मन को देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो मन को विषयों नाम जपते रहो काम करते रहो नाम जपते काम करते रहो पाप की वासनाओं से डरते रहो पाप की वासनाओं से डरते रहो सद्गुणों का परम धन कमाते चलो सद्गुणों का परम धन कमाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो गोविंद गोपाल ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो मन को विषयों दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं दुख में असली जो दम जिसको इंद्रिय नियंत्रण कहते हैं यही है दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं दुख में ओ नहीं सुख में फूलो नहीं प्राण जाए मगर धर्म भूलो नहीं प्राण जाए मगर धर्म ओ नहीं धर्म धन का खजाना लुटाते चलो धर्म धन का खजाना लुटाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो मन को विषयों के विष से चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गा चलो मन को विषयों और दृढ़ विश्वास कैसा वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी हम भी पाएंगे प्रभु को कभी ना कभी हम भी पाएंगे प्रभु को कभी ना कभी ऐसा विश्वास दिल में जगाते चलो ऐसा विश्वास जगाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो मन को हटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गा चलो गोविंद पाल गाते चलो मन को विषयों के विष से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान सुनाना हमारा कार्य सुनना आपका कार्य आपका मन माने तो मानो और ना मन माने तो ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति।